मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 30 अक्टूबर 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले सप्ताह आपने जितने भी डेली ऑडियो लेक्चर्स सुने हैं उसमें आपने महसूस किया होगा स्पष्ट रूप से कि हम लोग एक विषय को ले रहे हैं और एक विषय पर ही केंद्रित होकर के कुछ बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, यहां की जो बातें आपको बताई जा रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो संपूर्णता में है, यानी कि उस टॉपिक की जितनी भी बातें आपको जाननी चाहिए वो सारी बातें उसमें बताई जा रही हैं, नॉट एट ऑल। मेरी कोशिश हो रही है कि मैं उन्हीं बातों को उसमें एक्सक्लूसिवली शामिल करूं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं और साथ ही साथ आपको जो एक विजन दे सकती हैं, यानी कि उस विषय पर एक अलग तरह की समझ विकसित कर सकती हैं, आपकी थोड़ी उस पर गहरी पकड़ बना सकती हैं। और साथ ही साथ यह तो है ही कि डेफिनेटली उस विषय के बारे में थोड़ी सी आपको आधारभूत जानकारी भी मिल जाए। और यदि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो ये मान करके चलिए कि जो भी ऑडियो लेक्चर्स आप सुन रहे हैं तो आप सही तरीके से उसे अपना भी रहे हैं, आत्मसात भी कर रहे हैं। तो मित्रों, आइए आज हम एक ऐसे ही विषय पर बात करते हैं और आज का हमारा विषय है कि किस तरीके से जो भारत की जो मिट्टी है, हमारी जो खेती की जो जमीन है, मिट्टी है, वो धीरे धीरे अनुर्वरक होती जा रही है, यानी कि बंजर होती जा रही है, कम उपजाऊ होती जा रही है, ऊसर होती जा रही है। हम इस पर कुछ बातें करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप अनसॉल्व्ड पेपर उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि हर साल किसानों पर डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं और पूछे जाने भी चाहिए। हालांकि वो जनरल स्टडीज के थर्ड पेपर का हिस्सा होता है, सभी पेपर्स में सवाल ही नहीं है कि, यानी कि वो ज्योग्राफी में शामिल नहीं होता। हालांकि कहने का मेरा मतलब है कि ये हालांकि मिट्टी है, सॉइल ज्योग्राफी का हिस्सा होता है, पार्ट होता है, लेकिन ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये थर्ड जनरल स्टडीज के थर्ड पेपर में, या यूं कह लीजिए कि जो कृषि है वो आपके अर्थशास्त्र के पेपर का विषय है। आप उठा करके देखिए, हमेशा पूछे जाते हैं। अब उसमें आपको दो तरह के प्रश्न किसानों से जुड़े हुए स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। पहला तो यह है कि जो किसानों की अपनी समस्याएं हैं उनसे जुड़ी हुई, और दूसरी उनकी जो अर्थव्यवस्था है उनसे जुड़ी हुई। किसानों की जो अपनी समस्या है, आप यूं कह लीजिए इसको थोड़ा सा और मैं स्पष्ट कर दूं, जैसे उनको ऋण की समस्या आ रही है, फसल बीमा योजना की समस्या आ रही है, इस तरह की समस्याएं हैं। दूसरी जो समस्या है वो कृषि से जुड़ी हुई समस्या है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उस एग्रीकल्चरल के प्रोडक्शन में कहां प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो फिर मार्केटिंग की प्रॉब्लम हो, चाहे मिट्टी की अनुर्वरकता की ही प्रॉब्लम हो, चाहे रासायनिक खादों के इस्तेमाल की समस्या हो, पेस्टिसाइड की समस्या हो, या जो मिडिल मैन है उनकी समस्याएं हो, जो इन्हें हम दलाल कहते हैं, उनकी वजह से उन्हें बहुत अच्छे अच्छे रेट चीजों के नहीं मिल पाते हैं, या जो गवर्नमेंट के एक्ट हों, इस तरह के प्रश्नों से जो सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन हैं वो जुड़े रहते हैं। मित्रों, ये सब टॉपिक मैंने आपके लिए इसलिए चुना है कि सामान्यतया आप देखेंगे कि ये टॉपिक, हालांकि हम बात करेंगे भूमि के ऊपर ही, लेकिन हमारी कई तरह की जरूरतों को ये पूरा करने में सक्षम है। जैसे हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट क्यों कम हो रहा है उसमें आप इसे शामिल कर सकते हैं, किसानों की हालत इतनी खराब क्यों है उसमें आप इसे शामिल कर सकते हैं, यहां तक कि पर्यावरण संकट जो हमें आज दिखाई दे रहा है उसमें भी ये शामिल हो जाएगा, और उसके दो तीन एंगल से शामिल हो जाएगा। जब आप इस टॉपिक को सुनेंगे तब आपको बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। तो इस प्रकार ये जो टॉपिक है ये यूं कह लीजिए कि बहुमुखी है। हालांकि ठीक है, केंद्रित ये जरूर मिट्टी की उर्वरकता पर है, लेकिन इसका इस्तेमाल आप कई कई प्रश्नों, कई कई तरह के प्रश्नों के उत्तर देने में कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमारी मिट्टी कैसे धीरे धीरे अनुर्वरक होती जा रही है, बंजर होती जा रही है, ऊसर होती जा रही है। फ्रेंड्स, भारत इतना बड़ा देश है कि आप अगर मिट्टी वाले चैप्टर को आपने पढ़ा हो तो आप देखेंगे कि कई तरह की मिट्टियां हमारे यहां मिलती हैं। नो डाउट कि जो पूरा का पूरा ये उत्तर भारत का गंगा नदी का जो मैदानी क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र है, ये तो कछारी जमीन है, बहुत उपजाऊ मिट्टी है, क्योंकि वो बाढ़ से जो मिट्टी बह करके आती है तो उसमें बहुत ज्यादा क्षमताएं होती हैं। और इसके बाद जब हम साउथ में जाते हैं तो वो पठारी मिट्टी मिलती चली जाती है, तो उर्वरकता उनकी थोड़ी सी कम होती चली जाती है, राइट। तो आपको खासकर जो मिट्टी का विभाजन है भारत में, कितनी तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। ये आपकी ज्योग्राफी का हिस्सा है और प्री में इस तरीके के प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, राइट। तो हम उस पार्ट पर बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यहां मैं दो बातें आपसे स्पेशली कहना चाहूंगा शुरुआत में, कि पहली बात तो यह है कि हमारे दिमाग में सामान्यतया यह धारणा है कि मिट्टी का संबंध केवल उत्पादन से है, फसलों के उत्पादन से है। डेफिनेटली उसके उत्पादन से तो है ही, लेकिन मित्रों इसका संबंध दो चीजों से और है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा बाढ़, या पूरा का पूरा एनवायरमेंट आप कह लीजिए। जैसे अगर हम बाढ़ के बारे में बात करें तो इसके बारे में तो खैर आप जानते भी होंगे कि देखिए, जब पानी बरसता है तो पानी की जो बूंदें हैं वो मिट्टी पर पड़ती हैं, और लगातार अगर पानी की बूंदें मिट्टी के ऊपरी परत पर पड़ रही हैं तो वो मिट्टी धीरे धीरे पोली होती जाएगी और वह बहने लगती है, पानी के साथ बहने लगती है। देखिए कि जो बरसात का पानी है वो गिरता तो बड़ा साफ है, लेकिन बहता मटमैला है, तो वो मिट्टी उसमें घुल जाती है। अब ये मिट्टी जो बह रही है, ये मिट्टी बह करके नदियों में जाएगी, नदियों से फिर आगे वो जहां नदी गिरती है वहां चली जाएगी। अब सवाल ये है कि देखिए, जो ऊपर की मिट्टी जो बह रही है वो बहुत उपजाऊ मिट्टी है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी ऊपरी परत की ही होती है, क्योंकि इसी में कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया जो भी फसल के लिए जरूरी होते हैं, या जो पत्ते सड़ रहे हैं तो ऊपरी परत पर ही जमा हो रहे हैं। तो अगर ये मिट्टी बह रही है तो सबसे उपजाऊ मिट्टी हमारी नष्ट हो रही है। अब हम इसे रोकेंगे कैसे? सवाल यह है कि हम वर्षा को रोक नहीं सकते। तो हमारे जो पेड़ पौधे अगर वहां हो तो उनकी चूंकि जड़ें फैली हुई होती हैं तो वो मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, तो वो मिट्टी को रोक लेती हैं, तो इस तरह से वो मिट्टी बहने से बच जाती है, और दूसरा हमारे नदी भी गाद भरने से बच जाते हैं। अदरवाइज ये मिट्टी नदी में जाएगी, नदी में जाकर के वो मिट्टी जमा हो जाएगी, जमा होने के बाद उसका तल ऊपर हो जाएगा तो उसमें पानी को धारण करने की क्षमता कम हो जाएगी, और फिर वो बाढ़ के रूप में पानी नदियों से निकल निकल करके मैदान में फैलने लगेगा और फसल नष्ट होगी, जान माल की हानि होगी। ये तो मिट्टी का संबंध बाढ़ से हो गया, राइट। दूसरी जो चीज है फ्रेंड्स, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके बारे में मुझे लगता है कि बहुत कम स्टूडेंट को शायद मालूम। हां, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हैं, तो फिर डेफिनेटली मालूम होगा। देखिए, अब होता क्या है कि जब मिट्टी ये बह रही है, मिट्टी जो बह करके जा रही है, तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायुमंडल में निकल करके बह जाती है। देखिए, मिट्टी में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और बहने के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में मिल जाती है, यानी कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को ये बहती हुई मिट्टी बढ़ा देती है, राइट। दूसरा मिट्टी का जो कार्बन डाइऑक्साइड से संबंध है कि देखिए, मिट्टी में फसल पैदा होती है, पेड़ पौधे होते हैं, तो उस समय ये जो पौधे हैं, ये वृक्ष हैं, ये आपको तो ये बात तो मालूम ही है कि वो वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, और बदले में वातावरण से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सॉरी, और ऑक्सीजन हमें देते हैं। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद उनके अंदर ही समाहित हो जाती है, वो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वो सोखते रहते हैं। और जब ये फसल सूख जाती है तो सूखने के बाद उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो मिट्टी में मिल जाता है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मिट्टी में मिल जाती है। इस प्रकार यूं कह लीजिए कि जो मिट्टी है वो कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे सुरक्षित भंडार है, वहां कार्बन डाइऑक्साइड सुरक्षित है। और यही मिट्टी बह करके जब नदियों में जाती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है और वायुमंडल में मिल जाती है, तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंपोनेंट है, कंटेंट है, वो बढ़ जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जब मिट्टी बह जाती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे ज्यादा मात्रा रहती है, तो जो मिट्टी बच जाती है अधिकांश मिट्टी में, मतलब अभी जब परीक्षण किया जा रहा है तो उसमें यह पाया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 30-60% तक कम हो जा रही है। 30-60% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, और उसका कारण यही है कि हम जितना मिट्टी से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं उसकी पूर्ति करा नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके से जो मिट्टी की क्वालिटी होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं डेटोरिएट हो रही है, कहीं ना कहीं वो घट रही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से वातावरण से भी इसका संबंध है, राइट। अब आइए हम इसके थोड़े से दूसरे पक्ष को देखते हैं, खासकर जो रासायनिक खादों का उपयोग है, ये हमारे यहां की जमीन को सबसे ज्यादा ऊसर बनाने में अपनी भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद आ रहा है, मैंने पहले शायद कभी इस बात की चर्चा की भी हो कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन का दौर आया 1965-66 के आसपास, इसकी शुरुआत हुई थी लगभग, उस समय से रासायनिक खादों का प्रयोग होने लगा। हम लोग के गांव में इसे जो यूरिया होती है ना, उसे कहा जाता था चीनिया खाद, वो चीनी जैसी दिखती है, और जो सुपर फास्फेट खाद होती थी उसको कहा जाता था राखड़ खाद, वो राख जैसी दिखती है। ये दो खाद सबसे ज्यादा पॉपुलर थे। डेफिनेटली उस समय जब इनका उपयोग किया गया तो फसल में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। मतलब ये माना जाता है कि जब इसकी शुरुआत हुई थी तो अगर 1 किलो रासायनिक खाद डाला जाए तो उससे फसल में 25 किलो की बढ़ोतरी हो जाती थी, जो बहुत थी। 1 किलो रासायनिक खाद के अगेंस्ट में 25 kg फसल का उत्पादन बढ़ जाना अपने आप में सफिशियंट था और फायदेमंद भी था। तो किसान इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करने लगे, और अनफॉर्चुनेट पार्ट यह रहा कि हमारे जो किसान हैं उनको बहुत अच्छे से ट्रेंड नहीं किया गया कि देखिए ये जो रासायनिक खाद है ये अपने आप में कंप्लीट खाद नहीं है, संपूर्ण खाद नहीं है। इसकी किस मात्रा में उपयोग किया इसका किया जाना चाहिए और किस प्रकार किया जाना चाहिए, दोनों के बारे में ट्रेंड नहीं किया गया। तो नतीजा यह हुआ, हम लोग देखते थे कि किसान खाद की बोरियां ला रहे हैं और खेतों में डालते चले जा रहे हैं। तो शुरू में तो उनको परिणाम बहुत अच्छे मिले, तो उत्साहित भी हुए, उन्हें लगा कि नहीं, वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे हालत ये होने लगी कि 1975 तक आते आते सोचिए केवल 10-15 साल में जो 1 किलो रासायनिक खाद के अगेंस्ट में 25 kg अधिक फसल हो रही थी वो 15 किलो रह गई, 15 किलो, और बाद में 2014-15 तक आते आते मात्र 4 किलो रह गई। और अगर 1 किलो रासायनिक खाद से 4 किलो फसल उत्पादन बढ़ रही है तो ये मान करके चलिए किसानों के लिए नुकसान का सौदा है, क्योंकि 4 किलो अधिक फसल उत्पादन लेकर के वो उसके खर्च को मीट आउट नहीं कर सकते। ये हमारे आज की कृषि व्यवस्था का एक बहुत बड़ा संकट हो गया है, अविवेकपूर्ण तरीके से उसका उपयोग करने के कारण। वेस्ट में भी इसका उपयोग होता है, ऐसा नहीं कि रासायनिक खाद, वहां तो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से खेती होती है, लेकिन उनका जो उपयोग किया जाता है वो बहुत ही सोच समझकर बड़े साइंटिफिक तरीके से किया जाता है, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से। मतलब ये समझ लीजिए कि वहां तो पहले मिट्टी का परीक्षण किया जाता है कि भाई इस मिट्टी को किन किन तत्वों की जरूरत है, इसको फास्फोरस चाहिए, साल्ट लवण चाहिए, या इसको और क्या क्या चीज चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, और उस हिसाब से फिर उसमें वो चीजें डाली जाती हैं। हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं किया गया, लोगों ने अंधाधुंध डालना शुरू कर दिया, और उसमें जो तत्व थे कह लीजिए रासायनिक खादों में, उन्होंने मिट्टी की जो गुणवत्ता थी उस मिट्टी की गुणवत्ता को नष्ट करना शुरू कर दिया। देखिए, हमारे यहां मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए एक ऑटोमेटिक परंपरागत सिस्टम था। अगर आप गांव में रहते हैं या आपको थोड़ा सा भी किसान खेती किसानी का पुराना अनुभव है तो आप जानते होंगे कि एक तो हमारे यहां फसल को रोटेट करके बोया जाता था। ये ऐसा नहीं होता था कि एक जमीन पर वही फसल हर साल बोई जा रही है, कुछ कंबाइन करके बोई जाती थी। जैसे मुझे याद आ रहा है कि मूंगफली बो दी जाती थी, उसके साथ ही अरहर की दाल भी बो दी जाती थी, दालें बो दी जा रही, फिर मोटा अनाज बोया जा रहा है, इस तरीके से रोटेट कर करके बोया जाता था। और जो थोड़ी सी कम उपजाऊ जमीन होती थी उसे तो एक आध साल परती छोड़ देते थे कि ठीक है नेचुरल तरीके से इस मिट्टी में थोड़ी ताकत पैदा हो जाएगी तो हम एक साल छोड़ करके और फिर नेक्स्ट ईयर उसमें खेती करेंगे। तो वो अपनी रिगेन कर लेता था, फिर से प्राप्त कर लेता था वो अपनी शक्ति को। तो हमने फसल चक्र को भी बो दिया, फसल चक्र को कहा, बल्कि सच पूछे तो अब हम नेचुरल फसल न लेकर के अब एक तरीके से आर्टिफिशियल फसल लेने लगे हैं। आप देखिए कि जिन जिन क्षेत्रों में पहले जो फसल होती थी अब वहां उस तरह की फसल नहीं हो रही है, अब तो मार्केट के लिए फसल पैदा की जा रही है कि कौन सी फसल हम बोएं तो हमें ज्यादा फायदा मिल सकेगा। इससे भी हमारे जो मिट्टी की जो एक नेचुरल जो एक प्राकृतिक क्षमता होनी चाहिए होती है, उस प्राकृतिक क्षमता पर बहुत जबरदस्त दुष्प्रभाव पड़ा है। और फिर आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे पशुपालन भी ग्रामीण जीवन से गायब होता जा रहा है। पहले पशुओं का से खाद मिल जाती थी, अब वो भी स्थिति धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो मित्रों ये कुछ कारण रहे जिसकी वजह से लगातार हमारे मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो कम होती चली गई, और फिर मिट्टी का दायरा भी कम होता चला गया। आपको यह भी मालूम है कि किस तरीके से शहरीकरण बढ़ रहा है, तो शहरीकरण बढ़ने के कारण जमीन का रकबा कम होता जा रहा है, खेती का रकबा कम होता जा रहा है, उद्योगों के कारण रकबा कम होता जा रहा है, नहरों के कारण जो पानी आसपास का जो एरिया होता है, बांध के कारण उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है, वो जो मिट्टी होती है वो बहुत उपजाऊ नहीं रह जाती। और एक और भी संकट आ गया है कि अब चूंकि बड़े बड़े शहर बन रहे हैं, बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, तो हालत ये हो रही है कि ईंटों की जरूरत पड़ रही है, तो उन ईंटों के कारण भी खेती की जमीन नष्ट हो रही है, अकुपाई होती चली जा रही है, और ईंट के लिए जो मिट्टी लगती है वो ऊपरी परत की मिट्टी लगती है। तो मित्रों इस तरीके से धीरे धीरे हमारी जो जमीन है, जो खेती योग्य जो भूमि है, उसकी जो उर्वरक क्षमता है वो कम होती जा रही है, यूं कह लीजिए कि वो बंजर में तब्दील होती जा रही है। आपने देखा होगा इसी बात को ध्यान में रखकर के फरवरी 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई है, जो अभी मैंने शुरुआत में बात की कि फॉरेन कंट्रीज में इसी तरह से उर्वरकों का उपयोग होता है कि किस मिट्टी को कितनी किस तरीके की आप कह लीजिए कि न्यूट्रिशंस चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। तो अब काफी इसमें जो खासकर जो हमारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो उसकी जो योजना शुरू की गई है इसमें काफी सफलता मिल गई है। लगभग अधिकांश किसानों की मिट्टियों का परीक्षण करके उनको कार्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। अब इस पर व्यावहारिक रूप में कितना अमल हो पाता है, तंत्र कितना इसको ठीक से निभा पाता है, किसान कितना इस पर विश्वास करके इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, इसको आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक चीज जो बड़ी अच्छी खबर है जो सुनने में आई है कि दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे हैं कि सरकार नीम कोटेड यूरिया लेकर के आ रही है, कंपोस्ट खाद पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है, उसके लिए प्रोजेक्ट तैयार कर रही है, किसानों को बना बना करके दे रही है कि वो इस तरह के खाद का इस्तेमाल करें ताकि रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल कम हो सके, क्योंकि अगर इसको कम कर दिया जाएगा तो भूमि अपनी उर्वरक क्षमता को फिर से प्राप्त कर लेगी। तो एक अच्छी खबर यह है कि 2016-17 में जो उर्वरक हैं, रासायनिक खाद हैं, उनकी जो खपत है लगभग 8-10% कम हुई है। मजेदार बात है कि इसकी खपत 8-10% कम हुई है और जो उत्पादन क्षमता है वो 10-12% बढ़ी है। ये आंकड़ा आप नोट कर सकते हैं, यह आपके बहुत काम का डेटा होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं कि 2016-17 में जो उर्वरकों का उपयोग है वो 8-10% कम हुआ है, जबकि जो खाद्यान्न का जो उत्पादन है उनकी जो उत्पादकता है, कह लीजिए उत्पादक ज्यादा अच्छा शब्द होगा, 10-12% बढ़ा। तो मित्रों ये कुछ बहुत ही व्यावहारिक बातें जो जनरल स्टडीज की दृष्टि से की जानी चाहिए वो मैंने आपसे की है। तो अब इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।